Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Sonu Sood.
धन्यवाद अनुभा. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे. हमारे साथ आज चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित है आर्थिक विशेषज्ञ सिद्धार्थ सिंह. सिद्धार्थ, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
नमस्कार.
और अब हेडलाइंस के साथ है अनुभा रोहतगी.
थैंक यू सोनू. Prime Minister Narendra Modi says maritime sector is driving India's growth. Adds, this is the right time to invest in country's shipping sector. Benchmark domestic indices edge higher. Sensex rises over 350 points. Nifty settles above 26,000 for the first time this year. And most Asian markets end in positive territory.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समुद्री क्षेत्र भारत के विकास को गति दे रहा है. उन्होंने ये भी कहा कि देश के शिपिंग क्षेत्र में निवेश करने का ये ठीक समय है. प्रमुख घरेलू सूचकांक बढ़त में रहे. सेंसेक्स 350 अंकों से अधिक बढ़ गया. निफ्टी इस वर्ष पहली बार 26,000 के ऊपर हुआ पार. और अधिकांश एशियाई बाजार बढ़त पर हुए पार.
And before we begin the program, an important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And now let's begin with the top story of the program. Prime Minister Narendra Modi today said, maritime sector is driving India's growth. He said over the last decade, the sector has transformed significantly, boosting trade and port infrastructure. Mr. Modi was addressing the Maritime Leaders Conclave organized under the India Maritime Week 2025 at the NESCO Exhibition Center in Mumbai this evening. The Prime Minister said today India's ports are counted among the most efficient in developing world. He said in many aspects, they are performing even better than those in the developed world. Mr. Modi highlighted that amid global tensions, trade disruptions and shifting supply chains, India stands as a symbol of strategic autonomy, peace and inclusive growth. He urged investors from various countries to seize this moment to engage and expand in India's shipping sector, stating that this is the right time. The Prime Minister said the government has replaced over a century-old colonial shipping laws with modern, futuristic laws suited for the 21st century.
हमने 100 साल से ज्यादा पुराने colonial shipping laws को हटाकर 21st century के modern और futuristic laws लागू किए हैं. ये नए कानून स्टेट मैरिटाइम बोर्ड्स को एम्पावर करते हैं, डिजिटलाइजेशन का भी विस्तार करते हैं. द मर्चेंट शिपिंग एक्ट में हमने भारतीय कानून को इंटरनेशनल कन्वेंशन के साथ ग्लोबली अलाइन किया है.
सिद्धार्थ, यू नो इंडियाज ट्रेड, मोर देन 95% ऑफ इंडियाज ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड अबाउट 70% बाय वैल्यू मूव्स थ्रू सी रूट्स. So, and when we look at, you know, the way the world is right now grappling with climate change, with supply chain disruptions, with the global wars, with trade tensions, in this perspective, how important are events such as the Maritime Week, which is happening right now, and India's focus on strengthening its maritime sector?
See, Anubha, as you've rightly said, the importance as in terms of volume, about 95% of the trade moves through sea routes. Yes. For India, and 70% in terms of value. Yeah. In value terms. So I think it has a significant role for our trade as far as the role of shipping is concerned. And that is why I think since 2014, the focus of this government has been to how to, you know, give a fillip to shipbuilding in the country and reduce our reliance on foreign ships and to have brownfield and greenfield ports, and so it is, I think, a constant effort, and that is why if we would look last month only, I think the government approved almost a 70,000 crore rupees
for shipbuilding.
Yeah, package, which obviously there's 25,000 crore is for, to push, incentivize shipbuilding in the country, plus another 20,000 crores for maritime development. So I think, and if you look at the constant, the kind of our port capacities have doubled in last 10 years since 2014. I think it was about 1400 million metric tons, and now it is close to 2700 million. And even the inland capacity has that has also seen a very huge jump. I would say almost 700%. I think it we are now close to about 150 million metric tons in terms of our inland movement through cargo movement, and in terms of ports also. So I think that is the reason why this focus is there, plus and also the number of ships flying under Indian flags that has also gone up, and it's a capital intensive sector, would take some time obviously, and that is why government is pushing in so much. Plus you would also see the kind of money that we see, the kind of investment that it would attract. It's almost estimated that in next 20 years we should see an investment of about 8 trillion rupees. Plus also it's also an employment provider. So I think we expect that by 2047 we should have about 1.45 crore job creation also in shipping sector. Plus and why India also has an advantage in terms of the current way we are the people working in the shipping industry. I think India is almost one third of I think India is placed at number three in terms of providing people in human resources to the shipping industry.
सिद्धार्थ, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो हमारे पोर्ट्स हैं उनकी एफिशिएंसी इवन डेवलप्ड कंट्रीज से बेहतर है, कंटेनर टर्न अराउंड टाइम, बहुत सारे मेट्रिक्स हैं जिसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है. सो आपको लगता है कि जो एक सपना है कि हम एक ग्लोबल हब बने शिपिंग के डिपार्टमेंट में, वो काफी लगता है उस तरफ हम बढ़ रहे हैं?
नहीं, जैसे अभी मैंने बोला भी कि जो आंकड़े भी वो दिखा रहे हैं कि जिस तरह से हम शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में हमारी कैपेसिटी बहुत बड़ी है, और शायद शिपिंग के क्षेत्र में, लेकिन शिप बिल्डिंग एक एरिया है जो थोड़ा हाईली कैपिटल इंटेंसिव है. इसीलिए जो मैंने बात बोली कि कैबिनेट ने भी एक प्रपोजल इसको कैसे हम और ज़्यादा पुश करें, और इतना ही नहीं, सरकार ने टैक्स रिफॉर्म्स भी दिए हैं, टैक्स ब्रेक्स भी दिए हैं. अगर आप हिंदुस्तान के फ्लैग के नीचे अपना जहाज चलाते हैं तो उसमें भी आपको टैक्स इंसेंटिव्स भी हैं. तो इसको केवल ना केवल मतलब अनेकों प्रकार से पॉलिसी लेवल पे फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर शिप बिल्डिंग, प्लस आल्सो जो बात प्रधानमंत्री जी ने भी कही, जो पुराने रूल्स थे, कॉलोनियल रूल्स जो बहुत सालों से चले आ रहे थे, उनको भी हमने जो है हटाया है. तो और आज तकरीबन जो मैरीटाइम वीक चल रहा है, इसमें आप देखेंगे कि दुनिया भर से के 100 देश इसमें आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और तकरीबन एक लाख
के करीब डेलीगेट्स
हैं, और 500 एग्जीबिटर्स हैं. तो ऑब्वियसली इंडिया एक बड़ा प्लेयर के रूप में उभर रहा है शिपिंग इंडस्ट्री में.
10 लाख करोड़ का निवेश भी, उसकी भी बात हुई.
हाँ, वही 8 लाख करोड़ तकरीबन अगले 20 सालों में, और बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग, और इंडिया ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास एक लीड भी है.
जी जी, अब रुख करते हैं शेयर बाजारों का. प्रमुख घरेलू शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ खुले, और उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद 0.4% से अधिक की बढ़त पर बंद हुए. सेंसेक्स 369 अंकों के उछाल से 84,997 पर बंद हुआ, और निफ्टी 118 अंकों की वृद्धि से इस वर्ष पहली बार 26,000 के स्तर को पार करता हुआ 26,054 पर बंद हुआ. विस्तारित बाजार की बात करें तो मिडकैप सूचकांक में लगभग 0.7% की वृद्धि हुई, और स्मॉल कैप सूचकांक 0.5% से अधिक की बढ़त पर बंद हुआ.
Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, opened on a positive note and closed over 0.4% higher today after a choppy trading session. The Sensex gained 369 points to close at 84,997, while the Nifty climbed 118 points to settle above the 26,000 mark for the first time this year, ending the session at 26,054. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange closed with gains. The mid-cap index added almost 0.7% and the small-cap index ended over 0.5% higher.
सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 21 के शेयर बढ़त में रहे. सबसे अधिक बढ़ने वाले शेयरों में अदानी पोर्ट्स का शेयर लगभग 2.8% के उछाल में रहा. एनटीपीसी के शेयर में 2.6% की तेजी आई और पावर ग्रिड का शेयर लगभग 2.6% की बढ़त पर बंद हुआ। सबसे अधिक गिरने वाले शेयरों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 1.5% से अधिक का नुकसान हुआ, एटर्नल का शेयर 1.2% से अधिक गिर गया और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में 1.1% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई।
Among the sectoral indices at the BSE, 20 out of 21 sectors surged, with the auto sector bucking the trend, dropping over 0.5%. In the top gainers, power rose over 2.7%, utilities climbed 2.6%, and oil and gas advanced more than 2.5%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,482 companies advanced. And shares of 1,668 companies declined, while shares of 175 companies remained unchanged.
रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 6 पैसे मजबूत होकर 88.20 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक 98.9 पर था। सिद्धार्थ, आज अगर हम देखें तो 350 से अधिक अंकों की बढ़त हमने देखी है सेंसेक्स में और इस सप्ताह अभी 3 दिन हुए हैं, कल हल्की गिरावट थी 150 अंकों की, पर टोटल हम देखें तो लगभग 800 अंक बढ़ गया है बाजार। सो क्या लगता है आपको, कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जो बाजार को बढ़ावा दे रहे हैं?
नहीं देखिए सोनू, जहाँ तक ट्रिगर की बात है, मुझे लगता है जो ब्रॉड थीम्स अभी चल रही है कि जो हमारी ट्रेड नेगोशिएशन चल रही है यूएस के साथ, ऐसा लग रहा है कि शायद अब जल्दी हमारी कोई जो है ट्रेड डील की जो बातचीत इतने लंबे समय से चल रही तो शायद वो फाइनल स्टेजेस में है। और जैसा ट्रंप साहब ने भी उसका इंडिकेशन दिया है, उसके साथ साथ आप देखेंगे थोड़ा सा जो अनसर्टेनिटी थी चीन और यूएस के रिलेशंस को लेके, तो चाइना यूएस रिलेशंस में भी हम देख रहे हैं थोड़ा सा इंप्रूवमेंट। ट्रंप साहब, ही इज ऑन अ विजिट टू एशिया, ही इज
गोइंग टू मीट द चाइनीज,
सो आई थिंक दैट इज आल्सो हेल्पिंग। एंड प्लस एंड बिसाइड्स ऑल दिस, आई थिंक मुझे जो लगता है कि हमारे जो अपने डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जो इनकम टैक्स के इंसेंटिव हैं, जीएसटी का जो बहुत बड़ा रिफॉर्म सरकार ने किया, उसके साथ साथ जो रिजर्व बैंक की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट्स में जो कमी की गई, साथ साथ हमारी जो महंगाई है, इन्फ्लेशन, वो बहुत नियंत्रण में है। और इसके साथ साथ मुझे लगता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे इमीडिएटली लगता है, जो एक क्रेडिट को पुश दिया है आरबीआई ने अपनी लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में, जो बैंक्स को एक कई तरह के जो उन्होंने सुधार जो जिनकी घोषणा की जो, तो उससे भी कहीं ना कहीं एक क्रेडिट जो है बाजार में आसानी से अवेलेबल होगा फॉर डिफरेंट सेक्टर्स। तो मुझे लगता है ये सब कारण भी कहीं ना कहीं जो है मार्केट की जो मजबूती है उसके पीछे जो मैं इमीडिएट कारण इन्हें देखता हूँ।
सिद्धार्थ, यू नो इफ यू टॉक अबाउट द सेक्टर्स टुडे, वी सॉ दैट ऑफ द 21 सेक्टर्स एट द बीएसई, all 20, you know, out of 21, 20 sectors closed in green, with only the auto sector bucking the trend. So what's happening with the auto sector? Because it's very interesting, you know, it's seems to be you know, we seem to be seeing a lot of volatility here and mostly on the negative.
Anubha, I would say it could also be that since they have been drivers, big drivers of of growth, and I think in terms of GST, if you look at the one of the big sectors, one of the biggest sectors to
gain from
the GST cut, or the biggest pie has gone to the auto.
Yeah.
So I think it could also be profit picking, because in terms of, if you look at the auto numbers and the numbers that we were going to see in 1st November, I think we would see a huge jump in auto sales. So I think, and I don't think we should read too much into this.
Right.
Yes, I do not see any reason or worry, because I think the consumption story, India's consumption story, has just started.
Right.
And I expect the momentum which has been provided, the reasons which I gave, I think it's a third quarter. So I think we should see things looking up in the third quarter.
So basically, second quarter ke jo corporate results jo already aane shuru ho gaye hain, उनको आप कैसे आंकेंगे?
नहीं सोनू, देखिए सेकेंड क्वार्टर में एक तो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है, जब एक बार ये आशा बन गई थी कि कहीं ना कहीं जीएसटी कट्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जनरल कंप्रेशन था, उसकी वजह से भी एक कंप्रेशन डिमांड में आया। जो सितंबर का जो पूरा महीना था, वो कहीं ना कहीं वो इस उसमें चला गया कि लोगों को एक आशा बन गई कि अभी अनाउंसमेंट आ रहा है जीएसटी कट होगा, तो वो एक इम्पैक्ट था। प्लस उसके ऊपर जो टैरिफ का इम्पैक्ट, ये सब चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं उन सब चीजों की वजह से थोड़ा सा हमने देखा कि सेकेंड क्वार्टर में एक हिट हमें दिखेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, और वही कारण है, अगर आप देखेंगे IMF या वर्ल्ड बैंक जितने या रेटिंग एजेंसीज, तो उन्होंने सबने हमारे जो ग्रोथ के जो एस्टिमेट्स हैं इस साल के लिए, तो वो सबको उन्होंने बढ़ा दिया है, ऊपर कर दिया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से या सेंट्रल बैंक की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं वो कारगर साबित हो रहे हैं।
आइए रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। एशियाई क्षेत्र पर नजर डालें तो अमरीकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की आशाओं के बीच अधिकांश एशियाई बाजार आज तेजी में रहे। जापान का निकेई सूचकांक लगभग 2.2% के उछाल से पहली बार 51,000 से ऊपर रिकॉर्ड समापन स्तर पर बंद हुआ। अमरीका और जापान के बीच व्यापार संबंधों पर ताजा आशावाद से भी बाजार की धारणा को बढ़ावा मिला। अन्य सूचकांकों पर नजर डालें तो दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.7% से अधिक बढ़ गया और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.7% की वृद्धि हुई। दूसरी ओर सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक 0.2% की गिरावट में रहा। हांगकांग के बाजार आज अवकाश के कारण बंद थे। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में प्रमुख यूरोपीय बाजारों में रुख मिला जुला था। ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 0.7% की बढ़त पर था, लेकिन जर्मनी के डैक्स में 0.1% की गिरावट थी और फ्रांस के कैक में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था।
Moving on to the US markets, US stocks closed higher yesterday with all major indices reaching record levels during intraday trading. The gain was fueled by signs of easing trade tensions between the United States and China, along with strong gains in technology shares. Investors are also looking ahead to the upcoming Federal Reserve policy decision. The tech-heavy Nasdaq Composite Index climbed 0.8%, the Dow Jones Industrial Average added more than 0.3%, and the S&P 500 increased over 0.2%. Siddharth, the US Fed is going to announce its decision, the two-day meeting. Later today, we are going to hear, get to listen to the decision from the US Fed. So what is your expectation? Because a lot of people are expecting a second consecutive rate cut after September.
I think, Anubha, as you rightly said, I think it is widely expected, and it would, I think... Fed would go for a rate cut, and obviously there is a pressure to push the economy. But yes, they have to also balance on the other side, because we are yet to see the impact of tariff, all these tariff announcements of Donald Trump, what kind of impact they have on the inflation in the US. But I think the more critical part for the US Fed is also to ensure that the economy...
Yes.
Picks momentum, US economy picks up momentum, and is also able to ensure a fair balance in terms of the employment.
Right. So also the fact that, we saw that the Nasdaq composite climbed 0.8%. So it's a very interesting, I have a, NVIDIA, which is in chips, it has become the first company in history to be worth $5 trillion. And that's also one of the reasons we saw Nasdaq, climbing 0.8%.
Yeah, Anubha, I think the particular company you're mentioning, I think Donald Trump also made, because he's meeting the Chinese
people tomorrow. Yes, so a lot of expectations.
So I think it is also because of that, the jump in technology stocks, or the euphoria seen in the US markets in the technology stocks, is emanating from that. But I think we should wait and watch. Because there's always been uncertainty with Mr. Trump.
But Siddharth, अभी जो main countries हैं, Japan, China, India, सभी के साथ जो talks हैं, वो progress कर रही हैं US की positively. So आपको लगता है जो हम ये इतने high record high वो देख रहे हैं levels बाजारों में, ये स्थायी रहेंगे, एक कोई crash की या bubble की situation नहीं है?
नहीं, देखिए, जहाँ तक हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की बात है, आप एक बात देख के चलें कि पिछले एक साल में, जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, और उसी के साथ साथ ऑलमोस्ट हिंदुस्तान से जो विदेशी निवेशक थे उन्होंने भी पैसा निकाला बड़े पैमाने पे, लेकिन उस तरह का क्रैश हिंदुस्तान की बाजार में नहीं हुआ। वी हैव बीन फेसिंग एडवर्सिटी फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 1 year, एंड दिस इज नॉट इंटरनल, जो भी एक्सटर्नल रीजंस की वजह से हमारे ऊपर जो अनसर्टिनिटी बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे जो हमारी बाजार में स्थिरता है, और वो प्राइमरली जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, अब तकरीबन हमारे पास 13 करोड़ एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, 20 करोड़ के ऊपर डीमैट अकाउंट, और जो बहुत बड़ी तादाद में रिटेल इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड के रूट से आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता, और कोई बबल क्यों इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि अगर आप देखेंगे मतलब जो हमारे ग्रोथ के आंकड़े हैं, या जैसे मैंने बोला इन्फ्लेशन, जिस तरह से सरकार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे अभी हम लोगों ने अभी शिप बिल्डिंग पे ही बात की, या एयरपोर्ट्स की बात हो, पोर्ट्स की बात हो, तो आप देखेंगे ऑल राउंड रोड्स की बात कर लें तो कहीं ना कहीं जो इनिशिएटिव्स जो डोमेस्टिक और कंजम्पशन को लेकर, डोमेस्टिक डिमांड, मॉनसून हैव बीन गुड, तो मुझे कोई इस तरह का बबल या किसी तरह का डर भारतीय बाजारों में तो नहीं लगता।
Let's move on to the next story. The US and South Korea have reached a broad trade deal following talks between their leaders. South Korea's presidential aide Kim Yong-byeom said the two sides will keep reciprocal tariffs at 15%, as was agreed earlier this year, but that the taxes on car and car parts would be lowered. Mr. Kim said that South Korea will also invest $350 billion in the US, including $200 billion in cash investment and $150 billion in shipbuilding. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has concluded his visit to Brussels after holding detailed discussions with EU Commissioner for Trade and Economic Security, Marcos Sefcovic, to advance the India-EU Free Trade Agreement, or FTA. In a social media post, Mr. Goyal informed that the talks were intense but highly productive, helping to resolve many outstanding issues. He stated that the discussions have laid the foundation for a balanced and robust agreement that will support business and India and the European Union. Siddharth, another, apart from, of course, the India-US deal, which everybody's following, this is yet another important free trade agreement, you know, that we have invested a lot and it's very important for India.
Yeah, as you rightly said, Anubha, we are eyeing and we have, I think we are very close to reaching an agreement with the European Union also on the free trade agreement. And I think we are all simultaneously, besides obviously the most important one with United States, we are also negotiating with New Zealand, Peru, Chile. So I think there are these are very critical, especially in the era where tariffs have the kind of tariffs which have been imposed by Donald Trump post his taking over as US president. So I think these kind of free trade agreements are the order of the day. And yes, that is why India is investing so heavily on them.
और अब चलते हैं स्टॉक मार्केट के लिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने म्यूचुअल फंड शुल्क संरचना में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव रखा है, जिससे निवेशकों से शुल्क वसूलने में प्रमुख बदलाव भी शामिल है। सेबी म्यूचुअल फंड विनियम 1996 की समीक्षा पर एक परामर्श पत्र में बाजार नियामक ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य म्यूचुअल फंड शुल्कों को सरल और न्याय संगत बनाना है, नियमों को सरल बनाने के लिए, पारदर्शिता बेहतर करने के लिए और यूनिट धारकों की लागत कम करने के लिए। सेबी ने ब्रोकरेज द्वारा अपने व्यय साझा करने की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने का प्रस्ताव रखा है। नए ढांचे के तहत प्रतिभूति लेन देन कर, एसटीटी, जीएसटी और स्टाम्प ड्यूटी जैसे करों और सरकारी शुल्कों को म्यूचुअल फंड व्यय अनुपात से बाहर रखा जाएगा और उन्हें अलग से दिखाया जाएगा, ताकि ये शुल्क निवेशकों से सीधे वसूले जा सके। सेबी ने इस प्रस्तावित फ्रेमवर्क पर 17 नवंबर तक सार्वजनिक सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। आपकी छोटी सी टिप्पणी इस पर, ये कितना अच्छा, बेहतर होगा इन्वेस्टर्स के लिए?
नहीं सोनू, एक तो ये जो मूव है, जो ओवरहॉल करने का फ्री स्ट्रक्चर जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए इंडिया में, ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर आज आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो तकरीबन 75 लाख करोड़ है, तो जब आपका एसेट इतना बड़ा हो चुका है, जो कॉर्पस है, तो जो फी स्ट्रक्चर है, एक तो वो ट्रांसपेरेंट होना ही चाहिए, जो टैक्सेस हैं वो अलग दर्शाए जाने चाहिए, और आप कितनी फीस ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी थोड़ा अपने मार्जिन्स को रिट्यूट करने की जरूरत है, क्योंकि जब आपके पास जो पाई है वो बहुत बड़ा हो चुका है और वो लगातार बड़ा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं निवेशकों को या इन्वेस्टर्स को कुछ फायदा देने का समय आ गया है।
अगली खबर की ओर चलते हैं। कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी की 14वीं किस्त का वर्चुअल शुभारंभ किया। श्री रेड्डी ने कहा कि नीलामी का उद्देश्य व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना, विविध निवेश आकर्षित करना और व्यापक उद्योग भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि कोयला और खान मंत्रालय पहली बार नीलामी ढांचे के अंतर्गत भूमिगत कोयला गैसीकरण के प्रावधान पेश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस सतह से बहुत नीचे दबे हुए खनन ना किए जा सकने वाले भंडारण उपयोग कर पाने में सहायता होगी। ये कितना जरूरी है कि जो भी हमारे रिजर्व्स हैं जो अभी तक नहीं टैप किए जा सकते थे उनको भी टैप किया जाए।
बेसिकली सोनू मुझे लगता है इट इज एम्ड एट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड इनकरेज वाइडर इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन, और कहीं ना कहीं पारदर्शिता इससे भी आती है, क्योंकि आपको याद होगा अगर पिछली सरकार की हम लोग बात करें तो कोयले के ऑक्शंस को लेके काफी जो है इश्यूज हुए थे।
जी। लेट्स मूव ऑन। द जीएसटी बचत उत्सव किक्ड ऑफ ऑन 22nd सितंबर एज द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट Narendra Modi government slashed GST rates in many sectors across the country. Today, our correspondent brings a report on how the reduced GST rates in tourism sector are benefiting citizens.
The next generation GST reforms have provided relief to the tourism sector by reducing tax burden and making travel, accommodation and cultural experiences more affordable for citizens. GST on hotel stays priced under 7,500 rupees per night has been reduced from 12% to 5%, making accommodation more accessible. The step has boosted weekend travel, pilgrimage circuits, heritage tourism and eco-tourism. Furthermore, it has encouraged investment in hotels and homestays, creating jobs and improving infrastructure. These reforms are aimed at boosting domestic and foreign tourist inflows, promoting and supporting sustainable tourism growth. With Samarth Shivang Mishra, Akashvani News, Delhi.
Let's move on to commodities. Global crude oil prices rose today as investors eyed a meeting tomorrow between the leaders of the US and China, the world's top two consumers. Brent crude was trading around 0.4% up at $64.66 per barrel, and WTI crude was trading 0.4% up at $60.40 per barrel when reports last came in. A very quick comment from you, Siddharth. Obviously, people are expecting something, you know, positive to come out from this meeting between Mr. Trump and Mr. Xi. And based on that, you know, if something positive comes out, it's good because it'll promote growth.
No, yeah, Anubhav, and plus in terms of, since you're speaking about the crude oil prices, I think the current levels of crude oil obviously are very favorable to India.
Yes.
Though, because we are huge, almost 85% of the crude oil is imported by us. So, since the imposition of Russian sanctions on the Russian companies, oil companies, I think India has to obviously recalibrate its oil supplies. And I think we've already started it. And if you look at this month, October itself, I think we've already started sourcing crude from US also now.
Right.
I think this month, the US has been the largest supplier for crude to us. So I think, and since if the two big leaders are able to reach an agreement, obviously rare earth is one of the biggest issues between, and that also impacts us. So I think if there is a positive outcome, obviously then it will add a more positive to the markets, to the economies all over the world.
Let's move on to gold and silver. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading over 1.3% up at 1,21,510 rupees per 10 grams, while silver was trading nearly 2% up at 1,47,470 rupees per kilogram.
उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ताजा समाचार मिलने तक दिसंबर अनुबंध वाला सोना 1.3% की बढ़त से 1,21,245 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, और दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 1.9% से अधिक बढ़त के साथ 1,47,152 रुपए प्रति किलो पर थी। आज जो दूसरा, आप जैसा आपने शुरू में ही कहा था कि आज FOMC की अनाउंसमेंट होने वाली है, आप बताएं कि एज एन एक्सपर्ट आपका क्या सटीक एक एस्टिमेट अगर आप दें कि क्या बदलाव हो सकता है उसमें ब्याज दर में, और कैसे वो गोल्ड के रेट्स को भी अफेक्ट कर सकता है?
नहीं, अगर FOMC ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट्स घटेंगे तो मतलब US के लिए, और जो है एज एन इकॉनमी ऑब्वियसली इट इज़ इंटेंडेड टू बूस्ट US इकॉनमी अगर इंटरेस्ट रेट्स वहाँ घटते हैं, बट क्योंकि वहाँ पे उनको कहीं ना कहीं अपनी इकॉनमी में जो सबसे बड़ा बैलेंस इंटरेस्ट रेट्स के साथ इन्फ्लेशन महंगाई के साथ वो देखना होता है कि जो रोजगार सृजन है, तो वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट उनके लिए।
समय समाप्त हो रहा है, सो हमें चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा। सिद्धार्थ, आप आए, हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।
And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi says maritime sector is driving India's growth, adds this is the right time to invest in country's shipping sector. Benchmark domestic indices edge higher, Sensex rises over 350 points. Nifty settles above 26,000 for the first time this year. And most Asian markets end in positive territory. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at the same time. Till then,
नमस्कार। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
Market Mantra.